राधिका आयशा के साथ राजवंश विला में आई हुई थी। उसने जैसे तैसे करके उर्वशी को शादी के लिए मना लिया था। वहां से लौटते वक्त अचानक राधिका की तबियत खराब हो गई और ऋषिका उसे वसुधा के विला ले आई थी। राधिका की तबियत थकान की वजह से बिगड़ी थी। ऋषिका और वसुधा यही चाहते थे कि राधिका वहां आराम करे, लेकिन आयशा ने मिस्टर सिंघानिया को वहां बुला लिया था। आदर्श का चेहरा देखते ही ऋषिका को एक बार फिर से याद आने लगा कि वो उसके पिता नहीं है। एक पल के लिए ऋषिका को ये भी लगा कि हो सकता है वो सिर्फ राधिका की बेटी हो, और खोई हुई हालत में ऋषिका आदर्श से सच पूछने जाने लगी। उसके पास जाने से पहले आयशा ने ऋषिका का हाथ पकड़ा और आंखें दिखाते हुए कहा, क्या कर रही हो? डैड आ गए हैं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारी हैप्पी फैमिली से दूर रहो। ऋषिका कुछ कदम पीछे हो गई। उसने आदर्श और राधिका की तरफ देखा। आदर्श जिस हिसाब से उनकी परवाह करते हुए उन्हें गोद में उठाकर लेकर जा रहा था, उससे साफ था कि वो आज भी राधिका से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार कि उसने मालविका को अपनाने तक से मना कर दिया। अचानक ही ऋषिका की आंखों के सामने अंधेरा जाने लगा और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। आदर्श वहां आते ही तुरंत राधिका को ले जाने लगे। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, उर्वशी तेजी से वहां आई और ड्रामेटिक वे में बोली, ओ माय गॉड, राधिका को क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो ये मुझसे बात करने के लिए आई थी और अब इनका चेहरा कितना कमजोर लग रहा है। उर्वशी को देखकर आयशा तुरंत उनके पास जाकर बोली, कुछ खास नहीं मॉम, बस थकान की वजह से बेहोश हो गई। हालांकि आदर्श ने भी उर्वशी को देखा था, लेकिन वो उसके पास रुके नहीं। इससे उर्वशी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन आयशा ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, डैड मॉम को लेकर परेशान है, बाहर काफी ठंड है तो वो उन्हें गाड़ी में ले जाने के लिए जल्दी कर रहे हैं। उर्वशी ने सिर हिलाया और फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आयशा तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारी मॉम का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है? खैर, पास्ट में जो भी हुआ उसे जाने देते हैं, तुम और नक्श कल ही जाकर अपनी शादी रजिस्टर करा लेना। आयशा ने हमेशा से ग्रैंड वेडिंग एक्सपेक्ट की थी, लेकिन जैसे ही उसने रजिस्टर्ड मैरिज का सुना उसके चेहरे पर मायूसी थी। उर्वशी ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, बेटा मैं भी चाहती थी कि मेरे इकलौते बेटे की शादी काफी धूमधाम से हो, लेकिन तुम जानती हो ना, सोशल मीडिया पर आजकल तुम्हारे बारे में अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। अगर हमने ग्रैंड वेडिंग की तो लोगों को हमारे ऊपर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड मॉम, कल मैं नक्श का वेट करूंगी, आयशा ने मुस्कुराकर कहा। आयशा इसी में खुश थी कि उसकी और नक्श की शादी जल्द से जल्द होने वाली है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले आदर्श ने कार का हॉर्न बजाया तो आयशा ने तेज आवाज में कहा, बस आ रही हूँ डैड। आयशा ने उर्वशी को बाय बोला और वहां से जाने को हुई। तभी ऋषिका राधिका को देखने के लिए बाहर आई। उसे देखते ही आयशा ने ऋषिका के पास जाकर कहा, मेरी मॉम को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करें। ये तो आज तुमने देख लिया होगा जब उन्होंने तुम्हें इस मामले से दूर रहने को कहा। उम्मीद है कि तुम इस घर को छोड़कर अपने पति के साथ रहने को चली जाओ। ऋषिका को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया और ना ही वो समझना चाहती थी। आयशा भी वहां से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद ऋषिका वापस वसुधा के विला में गई। ऋषिका वापस वसुधा के पास ही हुई थी कि तभी उर्वशी वहां आई और उसने वसुधा से कहा, दादी मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, एक्चुअली आयशा प्रेग्नेंट है और ये बच्चा नक्श का है। मैं नहीं चाहती कि ये न्यूज़ बाहर आए, तो मैंने उन्हें कहा है कि कल ही वो अपनी शादी रजिस्टर्ड करवा दे। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नक्श और आयशा की शादी की बात सुनकर ऋषिका को झटका सा लगा। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे इस शादी को रोकना चाहिए या नहीं। देखा जाए तो ये बच्चा नक्श का नहीं माहिर का था, ऋषिका ने अपने मन में कहा। अगर मैंने सबके सामने सच बताया और इन्होंने फिर से शादी के लिए मना कर दिया तो मिसेस सिंघानिया को फिर से इनके आगे झुकना पड़ेगा। सही यही रहेगा कि मैं चुप रहूं, कम से कम मिसेस सिंघानिया को तो इंसल्ट फील नहीं करना पड़ेगा। ऋषिका ने चुप रहने का निर्णय लिया। वहीं शादी की बात सुनकर वसुधा ने बेरुखी से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे नक्श की शादी से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की शादी करके यहाँ आ सकती है, लेकिन मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। मजबूरन उर्वशी को हाँ में सिर हिलाना पड़ा। उसने गहरी सांस ली और फिर घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप जानती भी हैं कि नक्श की सास का क्या बैकग्राउंड है? ऋषिका भी उनकी बात गौर से सुनने लगी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर राधिका कौन से खानदान से नाता रखती है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि राधिका दिल्ली से बिलोंग करती है और इतने सालों में कभी भी उनकी फैमिली ने उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया और ना ही कोई मिलने आया। पिछली बार जब मित्तल फैमिली उनसे मिली थी तब उन्होंने उन्हें काफी सम्मान दिया था। ऋषिका उनकी बातें गौर से सुन रही थी। तभी वसुधा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मुझे नहीं पता कि हमारे रिश्तेदार कौन से खानदान से नाता रखते हैं, तुम ही बता दो। उन्होंने कुछ खास बताया तो नहीं, पर हाँ ये कहा था कि उनकी फैमिली काफी सारी बिजनेस फैमिली से रिलेटेड है, तो फ्यूचर में नक्श अगर वहाँ बिजनेस करना चाहे तो वो उनकी हेल्प कर सकती है। आप तो जानती ही है ना कि दिल्ली की किसी भी बिजनेस फैमिली के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, वो भी अभिमन्यु की वजह से। तो ऐसे में नक्श और आयशा की शादी हमारे बिजनेस को और आगे लेकर जाएगी, उर्वशी ने खुश होकर बताया। बिजनेस फैमिलीज में अक्सर इसी तरह रिश्ते होते थे ताकि उनका बिजनेस और आगे बढ़े। प्रशांत और अभिमन्यु की मॉम की शादी भी इसी वजह से हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी नहीं टिकी और साथ ही राजवंश फैमिली के दिल्ली से सारे कॉन्टैक्ट भी खत्म हो गए थे। पूरी बात सुनने के बाद इशिका ने अपने मन में कहा, अच्छा तो इसलिए ये नक्श और आयशा की शादी करवा रही है। अगर नक्श की वजह से राजवंश एम्पायर को फायदा हुआ तो फ्यूचर में वो अभिमन्यु की जगह लेकर सीईओ बन सकता है। ये शादी पूरी तरह स्वार्थ पर टिकी थी। ये जानने के बाद वसुधा ने गंभीर आवाज में कहा, स्वार्थ से बनाए हुए रिश्ते ज्यादा टिकते नहीं है, तुम्हें नक्श को समझाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दादी, अब अभिमन्यु ने भी तो एक नॉर्मल लड़की से शादी की है, लेकिन क्या फायदा हुआ, दोनों अलग अलग रहते हैं और ना ही उनका कोई बच्चा है। गौर से सोचिएगा, अभिमन्यु के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, उसकी पत्नी उससे अलग रहती है और एक अनजान लड़की को आप उसकी पत्नी समझ रही हैं। ऊपर से शादी को 2 साल हो गए, दोनों के बच्चे भी नहीं है। उर्वशी ने बातों ही बातों में अभिमन्यु को लेकर वसुधा को सुनाना शुरू कर दिया था। उर्वशी उसे ये समझाना चाहती थी कि अभिमन्यु और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते सही नहीं है, लेकिन वसुधा को कुछ समझ नहीं आया। उर्वशी के जाने के बाद वसुधा ने कन्फ्यूजन से इशिका की तरफ देखकर कहा, इसने अभी अभी ये क्यों कहा कि वो बदमाश लड़का और तुम साथ में नहीं रह रहे, तुम दोनों तो एक साथ एक घर में ही रह रहे हो, ये कितनी अजीब बातें करती है। हाँ दादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो बकवास कर रही थी, आप प्लीज उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इशिका ने उन्हें शांत कराते हुए कहा। वसुधा भी उसकी बात से सहमत थी, लेकिन फिर भी उसने आह भरते हुए कहा, फिर भी उसने एक बात तो सही कही ना बहू, तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए, फिर भी तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ क्यों नहीं है, सच सच बताओ, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। उनकी बातें सुनकर इशिका हैरान रह गई, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे और उसे कैसे पता होगा कि अभिमन्यु में कोई कमी है या नहीं। इशिका ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी मुझे बहुत भूख लगी है, वो आज रात के खाने में क्या बनेगा?
हाँ, हमें आज रात क्या खाना चाहिए, वसुधा कुछ सोचते हुए से बोली। इशिका को लगा कि उसने टॉपिक बदल दिया है, लेकिन तभी वसुधा ने कहा, कुछ ऐसा बनवाना चाहिए ना जिससे वो लड़का थके नहीं, उसका स्टैमिना कमजोर होगा, जल्दी पैदा हो गया था ना, इस वजह से होगा। इशिका ने अपना सिर पकड़ लिया, वो चाहकर भी वसुधा को नहीं रोक पाई और रात को डाइनिंग टेबल पर जब वो लोग साथ में थे तो अभिमन्यु को एक अजीब से मेन्यू का सामना करना पड़ा जो कुछ ओवरी न्यूट्रिशियस था। अभिमन्यु को कुछ भी अजीब नहीं लगा, वो हमेशा की तरह चेंज करने के बाद डाइनिंग टेबल पर आया तो वसुधा ने उसकी प्लेट में खाना डालना शुरू किया और कहा, सारा दिन काम करते रहते हो, कुछ खाते भी नहीं, अब ये सारा तुम्हें खत्म करना है। वसुधा ने अभिमन्यु की प्लेट में खाने का पहाड़ सा लगा दिया था। अभिमन्यु को आखिर कहना ही पड़ा, दादी आप क्या कर रही हैं, मैं इतना ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं खा पाओगे, ठीक से खाते नहीं हो, तभी तुम्हारा ये हाल है कि ठीक से तुमसे कुछ नहीं होता, तुम रात को थककर बिस्तर पर जाते हो और सीधे नींद आ जाती है, वसुधा ने उसे डांटते हुए कहा। अभिमन्यु को उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया, उसने हैरानी से सिर हिलाकर कहा, दादी क्या आप मुझे क्लियरली बताएंगी कि मैं कौन सा काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ? इससे पहले कि वसुधा पूरा डिटेल में बता पाती, इशिका ने बीच में बोलते हुए जल्दी से कहा, खाने का काम ठीक से नहीं कर पाते हो, दादी के कहने का मतलब है कि आप देर रात को आते हो तो ठीक से खाना नहीं खा पाते हो और सीधे जाकर सो जाते हो, तो आज आप आराम से पेट भर के खाइए मिस्टर राजवंश। हाँ ठीक से खाओ, वसुधा ने फिर से कहा। इशिका ने राहत की सांस ली, तभी वसुधा ने आगे कहा, अगर ऐसे ही कमजोर रहोगे तो फिर मुझे परपोता कैसे मिलेगा? वसुधा के कहते ही इशिका ने अपनी दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था क्योंकि अभिमन्यु उसकी तरफ देख रहा था। अब अभिमन्यु ने गौर से सभी डिशेस की तरफ देखा तो उसे सब समझ में आ गया, उसका चेहरा लाल हो रहा था और वो सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाने लगा। डिनर के बाद हमेशा की तरह अभिमन्यु ने वसुधा से बातें करने का सोचा। जैसे ही अभिमन्यु उनके पास आने लगा, वसुधा ने अभिमन्यु के कमरे की तरफ इशारा करके कहा, मुझे कंपनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरे अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताओ, शादी को 2 साल हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए। इन सब में अभिमन्यु के साथ साथ इशिका को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, उसने तुरंत इस गलतफहमी को दूर करते हुए कहा, दादी वो मैं और मिस्टर राजवंश। वसुधा ने इशिका की बात को पूरा भी नहीं होने दिया और जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अचानक से मुझे दर्द क्यों हो रहा है? फिर उन्होंने इशिका की तरफ देखकर पूछा, तुम मुझे कुछ कहने वाली थी क्या बहू? थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। वसुधा को परेशान देखकर इशिका को वो टाइम याद आ गया जब उसके और अभिमन्यु के तलाक की बात सुनकर वसुधा की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। वो अभी भी सब कुछ सच बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इशिका ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, गुड नाइट दादी। उसके बाद इशिका ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा तो उस पर वही ना दिखने वाली स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखें हल्की छोटी हो गई थी। इशिका को समझ नहीं आया कि अभिमन्यु वसुधा को रोक क्यों नहीं रहा। इशिका कुछ बोल पाती उससे पहले वसुधा खड़ी हुई और निवेदिता का हाथ पकड़कर बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम दोनों भी अपने कमरे में जाओ और आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इशिका मजबूरन अभिमन्यु के साथ धीरे धीरे अभिमन्यु के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उन दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वसुधा वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लड़का हो या लड़की, कोई भी चलेगा। इशिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, मिस सिंघानिया रिलैक्स, दादी को कुछ भी बताया तो फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कहा है। इशिका ने अभिमन्यु की बात पर सिर हिलाया और उसके साथ कमरे में आ गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, वसुधा तुरंत निवेदिता के साथ कमरे के आगे आ गई और कान लगाकर उनकी बातों को सुनने लगी। वसुधा ने निवेदिता की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है निवेदिता, आज रात ये दोनों करीब आएंगे, मुझे मेरा परपोता मिल जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकती मैडम, लेकिन थोड़ी कोशिश तो इन दोनों को भी करनी होगी ना, निवेदिता ने जवाब दिया। वहीं रूम के अंदर की होल से इशिका सब देख सुन रही थी। वो हैरान रह गई। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और लाचारी से कहा, मुझे लगता है आयशा की प्रेगनेंसी की वजह से दादी इतना एक्साइटेड हो गईं और उन्होंने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली हैं। अभिमन्यु बिना कुछ बोले उसकी तरफ देख रहा था, फिर वो सोफे पर जाकर बैठ गया था। ना जाने क्यों उसे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उसे बहुत गर्मी लग रही हो। एक पल के लिए उसे लगा कि आज रात डिनर में वो सब खाने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। उसने खुद को सामान्य करने की कोशिश की। अभिमन्यु ने अपनी टाई ढीली की और फिर बातचीत का टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने सुना आज मिसेस सिंघानिया घर आई थी और उन्होंने नक्श और आयशा की शादी फिक्स कर दी है। हाँ, इशिका ने हामी भरते हुए कहा। फिर वह कुछ पल रुककर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उन्हें बताना चाहिए या नहीं कि आयशा नक्श के बच्चे की नहीं बल्कि माहिर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, उसके बारे में इतनी चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है राजवंश फैमिली के लिए खून के रिश्ते इतने मायने रखते हैं? वो बस राधिका सिंघानिया से वो सारे बिजनेस कनेक्शन पाना चाहते हैं, अभिमन्यु ने जवाब में कहा। इतना तो इशिका भी समझ गई थी कि उर्वशी ये शादी क्यों करवाना चाहती है। इशिका अभिमन्यु की तरफ देख रही थी, तभी अभिमन्यु ने कहा, आज मैंने मिसेस सिंघानिया के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया, क्या तुम जानना चाहती हो वो कहाँ से बिलोंग करती है? इशिका कब से इस बारे में जानना चाहती थी। वो अभिमन्यु से बात करने के लिए उसके बिल्कुल सामने जाकर बैठ गई। कुछ देर तक उन दोनों के बीच चुप्पी छाई हुई थी। इशिका ने महसूस किया कि अभिमन्यु बोलने के बजाय उसे अजीब नजरों से देख रहा है। क्या पता लगाया है आपने, इशिका ने फिर से पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु उसकी बात वहां बैठकर भी नहीं सुन पा रहा है। वहीं अभिमन्यु को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आई थीं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बांध रखी थीं। अभिमन्यु की खराब हालत देखकर इशिका ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर राजवंश? अभिमन्यु के माथे पर हल्की पसीने की बूंदें उभर आईं, उसकी आंखें भी लाल होने लगीं। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने होश में ना हो। अचानक अभिमन्यु उठा तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे। इशिका भी समझ नहीं पा रही थी अचानक उसे क्या हो गया। अभिमन्यु का चेहरा साफ जाहिर कर रहा था उसके साथ कुछ सही नहीं है, पर अभिमन्यु और इशिका दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर अभिमन्यु के साथ ये क्या हो रहा था। अगले ही पल अभिमन्यु हल्का लड़खड़ाते हुए इशिका के पास आया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले अभिमन्यु ने इशिका को कमर से पकड़ा और उसके साथ बेड पर था। अभिमन्यु इशिका के ऊपर था। इशिका ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। ऐसे लग रहा था जैसे अभिमन्यु होश में नहीं था।